छठा, हरिवर्मा चतुर्थ और चंपा में नई शक्ति का संचार। हरिवर्मा चतुर्थ अनाम के राजा लई थन्न तोन द्वारा रुद्रवर्मा चतुर्थ के परास्त हो जाने के पश्चात उत्पन्न हुई अवस्था के कारण जो अनेक राजा चंपा के विविध प्रदेशों में स्वतंत्र रूप से शासन करने लग गए थे, उनमें हरिवर्मा भी एक था। एक अभिलेख में उसे प्रालेश्वर धर्मराज का पुत्र तथा नारिकेल वंश का नारिकेलान्वय कहा गया है। संभवतः वह एक प्रादेशिक सामंत कुल में उत्पन्न हुआ था। अपने प्रतिस्पर्धियों को परास्त कर हरिवर्मा ने चंपा राज्य के बड़े भाग पर अपना अधिकार स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, पर उसका कार्य सुगम नहीं था। चंपा के कतिपय प्रदेश अब भी ऐसे थे जहां उसके प्रतिस्पर्धी स्वतंत्र रूप से राज कर रहे थे। साथ ही अनाम का राजा भी चंपा की अव्यवस्थित दशा से लाभ उठाने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। 1070 ईस्वी में उसने चंपा पर फिर आक्रमण कर दिया। कंबुज का राजा भी इस समय शांत नहीं बैठा था। उसकी सेनाओं ने भी चंपा के उन प्रदेशों पर धावे बोलना शुरू कर दिया जो कंबुज देश की सीमा के साथ लगते थे, पर हरिवर्मा ने इन सबका वीरतापूर्वक सामना किया। माइसोन के एक अभिलेख के अनुसार उसने 12 बार शत्रु सेनाओं को रण क्षेत्र में परास्त किया और 9 बार शत्रु राजाओं, सेनापतियों तथा सामंतों के सिर धड़ से अलग किए। सोमेश्वर नामक स्थान पर कंबुज की सेना को हराकर उसके सेनापति श्री नंद वर्म देव को उस द्वारा बंदी बना लिया गया। जिन अनेक राजाओं तथा सेनापतियों का हरिवर्मा द्वारा शिरच्छेद किया गया था वे वही होंगे जो चंपा में उसके प्रतिस्पर्धी थे। इसमें संदेह नहीं कि चीरकाल के संघर्ष एवं युद्धों के अनंतर हरिवर्मा अपने सब प्रतिस्पर्धियों को परास्त कर चंपा का एक अक्षत्र राजा बनने में समर्थ हो गया था और अपनी सैन्य शक्ति द्वारा उसने कंबुज तथा अनाम के आक्रमणों को विफल बनाने में भी सफलता प्राप्त की थी। इस प्रकार अपने सब बाह्य तथा अभ्यंतर शत्रुओं का विनाश कर हरिवर्मा ने अपना राज्याभिषेक कराया और इस अवसर पर उत्कृष्ट राज की उपाधि ग्रहण की। पर अभी हरिवर्मा का कार्य पूरा नहीं हुआ था। विदेशी आक्रमणों तथा आंतरिक अव्यवस्था के कारण चंपा राज के प्रमुख नगर प्रायः ध्वंस हो गए थे और उनके प्रासाद तथा मंदिर नष्ट कर दिए गए थे। अब हरिवर्मा ने इनके जीर्णोद्धार पर ध्यान दिया। उस द्वारा बहुत से मंदिरों की मरम्मत कराई गई, उनमें नई मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई और धर्म स्थानों के खर्च को चलाने के लिए जागीरें तथा धन संपत्ति प्रदान की गई। चंपा नगरी के भग्न भवनों का उसने पुनः निर्माण कराया और उसके प्रयत्न से चंपा राज्य की इस प्राचीन राजधानी ने अपने लुप्त गौरव व वैभव को फिर से प्राप्त कर लिया। हरिवर्मा चतुर्थ अभी 41 वर्ष का ही था कि उसे राजसुख से वैराग्य हो गया और उसने अपने शेष जीवन को भगवान शिव की उपासना में व्यतीत करने का निश्चय किया। उसके पुत्र का नाम राजद्वार था और अभी उसकी आयु केवल 9 वर्ष की थी। हरिवर्मा चतुर्थ के स्वेच्छापूर्वक राज सिंहासन का परित्याग कर देने पर उसके इसी पुत्र को श्री जय इंद्र वर्म देव के नाम से राजगद्दी पर बैठाया गया 1081 ईस्वी में। परम बोधिसत्व पर राज्य द्वार या जय इंद्र वर्मा के लिए चंपा के शासन सूत्र को संभाल सकना संभव नहीं था। चंपा की इस समय जो दशा थी उसमें कोई ऐसा व्यक्ति ही सफलतापूर्वक राज का संचालन कर सकता था जो योग्य तथा अनुभवी हो। 9 वर्ष के बालक के लिए राज्य के भार को वहन कर सकना सर्वथा असंभव था। इस स्थिति में राज्य के प्रमुख व्यक्तियों ने यह निश्चय किया कि हरिवर्मा चतुर्थ के छोटे भाई श्री युवराज महासेनापति कुमार पांग्य से राजा बनने के लिए प्रार्थना की जाए। माइसोन के अभिलेख के अनुसार क्योंकि राजा जय इंद्र वर्म देव बहुत कम आयु का था अतः उसे यह ज्ञान ही नहीं था कि राज्य के लिए कौन सी बातें अच्छी हैं और कौन सी बुरी हैं और उसके सब कार्य राजनीति के विपरीत होते थे। इस दशा में राज के सब सेनानायकों, ब्राह्मणों, ज्योतिषियों, पंडितों, आचार्यों और श्री हरिवर्म देव की रानियों ने किसी ऐसे कुमार को ढूंढना प्रारंभ किया जो राज्य के शासन सूत्र को संभालने में समर्थ हो। उनका ध्यान श्री युवराज महासेनापति कुमार पांग्य की ओर गया जो श्री जय इंद्र वर्म देव का चाचा और श्री हरिवर्म देव का छोटा भाई था, जिसमें राज चक्रवर्ती महाराज के सब लक्षण तथा गुण विद्यमान थे और जिसे अच्छे और बुरे में विवेक कर सकने की क्षमता थी। सेनापतियों और ब्राह्मणों आदि के निर्णय के अनुसार कुमार पांग्य ने राजा का पद स्वीकार कर लिया और वह परम बोधिसत्व के नाम से चंपा के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। परम बोधिसत्व भी अपने बड़े भाई के समान ही वीर तथा सुयोग्य था। चंपा के राज्य में पांडुरंग का प्रदेश अब तक भी ऐसा था जिसमें एक स्थानीय सामंत स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। इस राजा ने उसे जीत कर अपने अधीन कर लिया और इस प्रकार चंपा की राजनीतिक एकता को अविकल रूप से स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए परम बोधिसत्व ने अनुपम कर्तृत्व प्रदर्शित किया। ध्वंस हुए मंदिरों और उजड़े हुए नगरियों के जीर्णोद्धार के जिस कार्य को हरिवर्मा चतुर्थ ने प्रारंभ किया था, इस राजा ने उसे जारी रखा। इसी का यह परिणाम हुआ कि एक अभिलेख के अनुसार उसकी प्रजा के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ग उसके शासन में संपन्न तथा संतुष्ट थे। जय इंद्र वर्मा पंचम। परम बोधिसत्व ने 4 साल 1081 से 1085 तक राज किया। इसके पश्चात उसके उसी भतीजे श्री जय इंद्र वर्मदेव ने राजा का पद प्राप्त किया, जिसे वयस्क न होने के कारण राज के प्रमुख व्यक्तियों ने शासन के अयोग्य समझा था। जय इंद्र वर्मदेव ने भी अपने पिता तथा चाचा के समान चंपा नगरी तथा अन्य नगरियों को फिर से बर्बाद करने और उन्हें समृद्ध बनाने के कार्य पर विशेष ध्यान दिया। अब चंपा राज की आंतरिक दशा इतनी व्यवस्थित हो गई थी कि जय इंद्र वर्मा देव ने अपने राज्य के उन प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ किया जिन्हें उसने प्रदान करना स्वीकार कर रुद्र वर्मा चतुर्थ ने लई थन्न तोन के कैद खाने से छुटकारा पाया था। चंपा राज के इन उत्तरी प्रदेशों के प्रश्न को लेकर चंपा और अनाम के संबंध बहुत कटु हो गए थे। 1103 ईस्वी में एक शरणार्थी अनाम से चंपा आया और उसने राजा जय इंद्रदेव को यह सूचित किया कि इस समय अनाम की आंतरिक दशा अत्यंत अस्त व्यस्त है और उसके विरुद्ध लड़ाई प्रारंभ करके चंपा देश अपने खोए हुए प्रदेशों को फिर से प्राप्त कर सकता है। जय इंद्र वर्मदेव ने अनाम की अस्त व्यस्त दशा से लाभ उठाकर उस पर आक्रमण कर दिया और अपने देश के तीनों उत्तरी प्रदेशों को अनाम की अधीनता से मुक्त किया। पर चंपा की यह विजय देर तक कायम नहीं रह सकी। अनाम के राजा ने शक्ति का प्रयोग कर इन प्रदेशों में फिर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद जय इंद्र वर्मा ने अनाम के साथ मैत्री संबंध कायम रखने में ही अपना हित समझा और इसके राज दरबार में बहुमूल्य भेंट उपहारों के साथ अपने दूत मंडल भेजता रहा। श्री जय हरि वर्मदेव। 1114 ईस्वी में राजा जय इंद्र वर्मा की मृत्यु हुई और उसका भतीजा श्री जय हरि वर्मदेव पंचम चंपा का राजा बना। उसके शासनकाल की कोई महत्वपूर्ण घटना ज्ञात नहीं है। 1114 ईस्वी में उत्कीर्ण माइसोन के एक अभिलेख में श्री ईशान भद्रेश्वर के मंदिर को इस राजा द्वारा दी गई दान दक्षिणा का उल्लेख है। 7वां कंबुज देश और चंपा में संघर्ष। जय इंद्र वर्मा षष्ठ। संभवतः राजा जय हरि वर्मदेव के कोई संतान नहीं थी। इस राजा की मृत्यु के पश्चात जो व्यक्ति चंपा के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ उसका नाम जय इंद्र वर्मा षष्ठ था। अभिलेख के अनुसार उसका जन्म 1128 शकाबद 1106 ईस्वी में हुआ था। 1129 में उसे देवराज महासेनापति के पद पर नियुक्त किया गया था और 1133 ईस्वी में युवराज महासेनापति के पद पर। चंपा में ये अत्यंत उच्च राजकीय पद हुआ करते थे। इन पर अधिष्ठित रह चुकने के कारण राज्य में स्वाभाविक रूप से वही ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति था जो जय हरिवर्म देव की मृत्यु के पश्चात राज सिंहासन का अधिकारी था। 1139 ईस्वी में उसने राजा का पद प्राप्त कर लिया। जय इंद्र वर्मा षष्ठ के शासनकाल में चंपा को अनेक युद्धों में फंसना पड़ा। 1113 ईस्वी में कंबुज के राज सिंहासन पर राजा सूर्य वर्मा आरूढ़ हुआ था। वह बड़ा महत्वाकांक्षी तथा प्रतापी राजा था। पड़ोस के राज्यों को जीत कर वह अपने राज्य के विस्तार के लिए प्रयत्नशील हुआ। इसीलिए 1129 ईस्वी में उसने अनाम पर आक्रमण के लिए अपनी सेना भेजी जिसमें 20,000 सैनिक थे। सूर्य वर्मा चाहता था कि चंपा भी इस अभियान में उसकी सहायता करे। चंपा इसके लिए तैयार भी हो गया और उसकी एक सेना अनाम पर आक्रमण के लिए चल भी पड़ी। पर इससे पूर्व कि इन दोनों देशों की सेनाएं आपस में मिल सकती, अनाम ने इन्हें पृथक पृथक रूप से परास्त कर दिया। इसके बाद 1132 ईस्वी में कंबुज देश ने चंपा के सहयोग से एक बार फिर अनाम पर आक्रमण किया, पर इस बार भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। पर सूर्य वर्मा इससे निराश नहीं हो गया। 1137 ईस्वी में उसने फिर अनाम को आक्रांत किया, पर इस बार चंपा ने उसका साथ नहीं दिया। इस बार सूर्यवर्मा के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा, विशेषतः इस कारण से इस बार भी उसने अनाम के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। वह समझता था कि यदि चंपा की सेना पूर्ववत उसकी सहायता के लिए आ जाती तो वह अनाम को परास्त कर सकता था। अनाम को जीत सकने में अपने को असमर्थ पाकर कंबुजराज सूर्यवर्मा ने चंपा पर आक्रमण कर दिया और उसके अन्यतम प्रदेश विजय कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1145 ईस्वी में संभवतः जय इंद्रवर्मा षष्ठ या तो इस युद्ध में मारा गया था और या कैद कर लिया गया था। यह सुनिश्चित है कि 1145 में चंपा से उसके शासन का अंत हो गया था। रुद्रवर्मा परम ब्रह्मलोक। कंबुजराज सूर्यवर्मा आक्रमण के कारण चंपा की राजशक्ति पुनः अस्त व्यस्त हो गई थी। इस दशा में राजा परम बोधिसत्व के वंशज रुद्रवर्मा परम ब्रह्मलोक ने अपने राजा को घोषित कर दिया और पांडुरंग को केंद्र बनाकर उसने चंपा के शासन को संभालने का प्रयत्न प्रारंभ किया, पर 1147 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। श्री जय हरि वर्मदेव षष्ठ। रुद्रवर्मा परम ब्रह्मलोक के पुत्र का नाम रत्नभूमि विजय था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वह श्री जय हरि वर्मदेव कुमार शिवनंदन के नाम से चंपा के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। जिस समय इस राजा ने चंपा के शासन सूत्र को अपने हाथों में लिया, राज्य पर चारों ओर से विपत्ति की काली घटाएं घिर रही थी। कंबुज की सेनाओं ने विजय के प्रदेश को तो हस्तगत कर ही लिया था, वे चंपा के अन्य प्रदेशों को भी आक्रांत करने में तत्पर थीं। अनाम भी इस समय शांत नहीं बैठा था। उसकी सेनाओं ने भी उत्तर की ओर से चंपा पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए थे और दोनों राज्यों की सीमा पर निवास करने वाली किरात जातियों ने भी चंपा के प्रदेशों में लूटमार शुरू कर दी थी। पर जय हरिवर्मदेव इससे घबराया नहीं। उसने बड़ी वीरता से अपने शत्रुओं का सामना किया, उन सबको परास्त करने में सफलता प्राप्त की। श्री जय हरिवर्मदेव के शासन सूत्र को संभालते ही कंबुज के राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने चंपा पर आक्रमण कर दिया। 1147 ईस्वी में अपने प्रधान सेनापति शंकर को उसने चंपा पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। विजय राज्य जो चंपा का ही अन्यतम भाग था और 1145 ईस्वी में कंबुज की अधीनता में आ चुका था की सेना भी इस अभियान में शंकर की सहायता के लिए रणक्षेत्र में आ गई, पर सेनापति शंकर को इस आक्रमण में सफलता प्राप्त नहीं हुई। चकल्यंग के रणक्षेत्र में जय हरिवर्मदेव ने उसे परास्त कर दिया, पर सूर्यवर्मा इससे निराश नहीं हुआ। अगले साल 1148 में उसने एक बहुत बड़ी सेना चंपा पर आक्रमण करने के लिए भेजी, पर इस बार भी उसे निराशा होना पड़ा और कैव के रणक्षेत्र में जय हरिवर्मदेव ने उसे परास्त कर दिया। कंबुज के सेनाओं को दो बार परास्त कर जय हरिवर्मदेव ने यह विचार किया कि अब उसे रक्षात्मक नीति के बजाय आक्रमणात्मक नीति अपनानी चाहिए। इसीलिए उसने स्वयं कंबुज देश पर आक्रमण करने का निश्चय किया। जब यह समाचार सूर्यवर्मा द्वितीय को ज्ञात हुआ तो वह चंपा की सेनाओं का सामना करने के लिए तैयार हो गया। जय हरिवर्मदेव चाहता था कि सबसे पूर्व विजय प्रदेश को कंबुज की अधीनता से मुक्त कराया जाए। उसकी इस योजना का प्रतिरोध करने के लिए सूर्यवर्मा ने अपने सयाल पत्नी के भाई हरिदेव को विजय का शासक नियुक्त किया और उसकी सहायता के लिए शक्तिशाली सेना वहां भेज दी। पर चंपा के राजा ने महिष के रणक्षेत्र में हरिदेव को परास्त कर दिया और विजय पर से कंबुज के आधिपत्य की समाप्ति कर दी। अब विजय का प्रदेश भी जय हरिवर्मदेव के शासन में आ गया और वहां बड़ी धूमधाम के साथ उसका राज्याभिषेक किया गया 1149 ईस्वी में। यद्यपि कंबुजराज सूर्यवर्मा की महिष के रणक्षेत्र में बुरी तरह से हार हुई थी, पर अब भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। चंपा राज्य के सीमावर्ती प्रदेश में जो अनेक किरात जातियां निवास करती थी, अब उसने उन्हें जय हरिवर्मदेव के विरुद्ध भड़काना प्रारंभ किया, पर उसकी यह योजना भी सफल नहीं हुई। स्लय नामक गाँव के समीप चंपा की सेना और किरातों में घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें किरातों की हार हुई। बाह्य शत्रुओं को परास्त करने में जय हरिवर्मदेव ने अनुपम सफलता प्राप्त की थी, पर उसे आभ्यंतर शत्रुओं का भी सामना करना पड़ा और उन्हें वशीभूत करने में भी वह सफल हुआ। उसके अपने स्याल रानी के भाई वंशराज ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर किया और किरात सरदारों का समर्थन प्राप्त कर मध्यम ग्राम में अपने को राजा घोषित कर दिया। जय हरि वर्मदेव ने वंशराज के विरुद्ध सैन्य शक्ति का प्रयोग किया और जो किरात सरदार उसकी सहायता कर रहे थे उन्हें रण क्षेत्र में परास्त किया। किरातों को पूर्णतया वश में ले आने में जय हरि वर्मदेव ने सफलता प्राप्त कर ली थी, पर वंशराज उसके हाथ नहीं आया था। चंपा से भागकर उसने अनाम में शरण ग्रहण कर की थी। उसने अनाम के राजा से जय हरि वर्मदेव के विरुद्ध सहायता की याचना की। अनाम का राजा स्वयं चंपा के उत्कर्ष से बहुत चिंतित था। वह वंशराज को सहायता देने के लिए उद्यत हो गया और बहुत से सेनापतियों के नेतृत्व में 100,000 सैनिक चंपा पर आक्रमण करने के लिए भेज दिए गए। साथ ही उसने वंशराज को चंपा का वैध राजा भी घोषित कर दिया। पर अनाम का यह आक्रमण सफल नहीं हो सका। युद्ध में जय हरि वर्मदेव की विजय हुई और अनाम के बहुत से सेनापति और सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए 1150 ईस्वी में। पर जय हरि वर्मदेव की कठिनाइयों का अभी तक अंत नहीं हुआ था। चंपा में ऐसे सामंत राजाओं की कमी नहीं थी जो अवसर पाते ही अपनी स्वतंत्रता तथा संपूर्ण चंपा देश को अपने शासन में ले आने के लिए प्रयत्नशील हो जाते थे। 1151 ईस्वी में अमरावती में जय हरि वर्मदेव के विरुद्ध विद्रोह हुआ और 1155 में पांडुरंग में, पर इनका दमन करने में उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई और पर इनका दमन करने में उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई और 1160 तक यह स्थिति आ गई थी कि न उसे किसी अभ्यंतर शत्रु का भय रहा था और न बाह्य शत्रु का। अब वह चंपा का एक छत्र राजा बन गया था, जैसा कि उसके एक अभिलेख में लिखा है। अब उसने असिंधु भूत लपतित्व प्राप्त कर लिया था। देश में शांति तथा व्यवस्था स्थापित कर जय हरि वर्मदेव ने ध्वस्त मंदिरों के जीर्णोद्धार तथा उजड़ी हुई नगरियों को बसाने पर भी ध्यान दिया। पर इस महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए वह अधिक समय जीवित नहीं रहा। 1162 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। युद्ध में निरंतर व्यापृत रहते हुए भी उसने अपने माता पिता की स्मृति में 2 मंदिरों का निर्माण कराया था और महिष पर्वत पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी। माइसोन के एक अभिलेख में मंदिरों के जीर्णोद्धार तथा दान दक्षिणा के संबंध में जो कार्य इस राजा ने किए थे उनका उल्लेख है। चंपा के राजाओं में जय हरि वर्मदेव षष्ठ का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह परम प्रतापी एवं सुयोग्य शासक था। माइसोन के एक अभिलेख से सूचित होता है कि उसने चीर संघर्ष के पश्चात चंपा का राज सिंहासन प्राप्त किया था। युवावस्था में स्वदेश छोड़कर वह विभिन्न देशों में भटकता रहा था और चीरकाल के बाद चंपा वापस आया था। विहाय यशस्व देशम प्राक परेशु सुख दुख भाक देशेशु चीरकालीन चंपायाम पुनरागत। इसमें संदेह नहीं कि विदेशों में देर तक संघर्ष करने के कारण वह पूरी तरह से मंज गया था और इस प्रकार जो सामर्थ्य उसने प्राप्त किया था उसी से वह बाह्य और अभ्यंतर शत्रुओं से अपने देश की पूरी तरह रक्षा कर सका था। जय इंद्र वर्मा सप्तम। 1162 ईस्वी में जय हरि वर्मदेव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जय हरि वर्मदेव सप्तम चंपा के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। 2 अभिलेखों में उसका उल्लेख मिलता है, पर वह देर तक शासन सूत्र का संचालन नहीं कर सका। 1163 में चंपा की राज्य श्री जय इंद्र वर्मा सप्तम के हाथों में आ गया। वह ग्रामपुर विजय का निवासी था और जय हरि वर्मदेव षष्ठ व सप्तम के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं था। संभवतः उसने जय हरि वर्मदेव सप्तम के विरुद्ध षड्यंत्र करके राज सिंहासन पर अधिकार किया था। अवैध रूप से चंपा का राज्य प्राप्त कर उसने चीन के सम्राट की सद्भावना प्राप्त करने का प्रयत्न किया और बहुत से बहुमूल्य उपहारों के साथ एक दूत मंडल उसकी सेवा में भेजा। चीन का सम्राट इतने अधिक उपहार स्वीकार करने को उद्यत नहीं हुआ और उसे जब यह ज्ञात हुआ कि उपहार में भेजी गई संपत्ति अरब व्यापारियों से लूट कर प्राप्त की गई है तो उसने उसका कोई भी भाग ग्रहण करने से इनकार कर दिया। पर जय इंद्र वर्मा सप्तम को अपने बाहुबल पर भरोसा था। चंपा में उसकी स्थिति पूर्णतया सुदृढ़ थी। अब उसने कंबुज के विरुद्ध अपनी शक्ति को प्रयुक्त करने का निश्चय किया। अनाम की ओर से निश्चिंत होने के लिए उसने बहुत से उपहार उसके राजा की सेवा में भेजे और उसकी सद्भावनाओं को प्राप्त कर लिया। 1170 ईस्वी में उसने कंबुज पर आक्रमण कर दिया। इस समय वहां का राजा त्रिभुवनादित्य वर्मा था। जय इंद्र वर्मा ने उसके विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी और युद्ध विद्या में अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए चीन के एक व्यक्ति को नियुक्त किया, जो जहाज के डूब जाने के कारण चंपा के आश्रय लेने के लिए विवश हुआ। पर स्थल युद्ध में जय इंद्र वर्मा धर्मेंद्र वर्मा को परास्त नहीं कर सका। अब उसने समुद्र के मार्ग से कंबुज पर आक्रमण करने का निश्चय किया। एक चीनी अधिकारी के नेतृत्व में चंपा के जहाजी बेड़े ने समुद्र तट के साथ साथ कंबुज की ओर प्रस्थान किया और 1177 ईस्वी में मेकोंग नदी के मुहाने पर पहुंच गया। वहां से वह नदी के मार्ग से कंबुज की राजधानी की ओर अग्रसर हुआ। कंबुज की सेना उसके सम्मुख नहीं टिक सकी, वह परास्त हो गई और चंपा की सेना ने राजधानी को लूटकर अपार धन संपत्ति वहां से प्राप्त की। इस संपत्ति का उपयोग चंपा के मंदिरों को दान देने के लिए किया गया। जय हरि वर्म देव षष्ठ द्वारा चंपा के उत्कर्ष का प्रारंभ हुआ था। अब जय इंद्र वर्मा सप्तम के शासनकाल में यह देश शक्ति तथा उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया। इसमें संदेह नहीं कि इस समय चंपा की सैन्य शक्ति बहुत बढ़ गई थी। अंथुवन के एक अभिलेख से सूचित होता है कि तीन राजपुरुषों ने जय इंद्र वर्मा के प्रति भक्ति तथा आजन्म सैनिक सेवा करने की शपथ ग्रहण की थी। संभवतः इस काल में ऐसे सैनिकों का एक वर्ग संगठित हो गया था जो राजा के प्रति भक्ति रखते हुए जीवन पर्यंत सैनिक सेवा की प्रतिज्ञा किया करते थे। जय इंद्र वर्मा सप्तम के अनेक अभिलेख मिले हैं जिनमें उस द्वारा किए गए दान पुण्य का उल्लेख है। उसने बुद्ध लोकेश्वर, जयेंद्र लोकेश्वर, भगवती श्री जयेंद्रेश्वरी और भगवती इंद्र गौरीश्वरी की मूर्तियां प्रतिष्ठापित की थी। माइसोन के एक अभिलेख में इस राजा को व्याकरण, ज्योतिष और नारदीय व भार्गवीय धर्मशास्त्रों का पारंगत पंडित कहा गया है। त्रिभुवनादित्य वर्मा की मृत्यु के पश्चात जय वर्मा सप्तम ने कंबुज देश के शासन सूत्र को अपने हाथों में ले लिया था। 1181 ईस्वी में उसने चंपा के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा और जय इंद्र वर्मा की सेनाओं को कंबुज छोड़कर चले जाने के लिए विवश किया। जय वर्मा सप्तम एक महान विजेता था। वह चंपा की सेनाओं को अपने देश से बाहर निकालकर ही संतुष्ट नहीं हो गया, अपितु चंपा पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन करने में भी समर्थ हुआ। कंबुज देश का राजनीतिक इतिहास लिखते हुए जय वर्मा सप्तम की इन विजयों का विशद रूप से उल्लेख किया जा चुका है। श्री सूर्य वर्मदेव, जो मूलतः चंपा का निवासी था, के नेतृत्व में कंबुज सेनाएं चंपा पर आक्रमण करने के लिए भेजी गईं। उन्होंने चंपा को बुरी तरह से परास्त किया और वहां के राजा जय इंद्र वर्मा सप्तम को बंदी बनाकर वे कंबुज ले आईं। जय वर्मा सप्तम ने शासन के लिए चंपा को दो भागों में विभक्त किया। दक्षिणी भाग का शासक श्री सूर्य वर्मदेव को नियुक्त किया गया और उत्तरी भाग का सूर्य जय वर्मदेव को, जो जय वर्मा का स्याल पत्नी का भाई था। दक्षिणी भाग की राजधानी राजपुर बनाई गई और उत्तरी भाग की विजयनगरी। श्री सूर्यवर्मदेव, दक्षिणी चंपा का शासन करने में श्री सूर्यवर्मदेव को अच्छी सफलता प्राप्त हुई, पर उत्तरी चंपा में रघुपति नामक सामंत ने सूर्य जयवर्मदेव के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और जय इंद्र वर्मदेव के नाम से अपने को राजा घोषित कर दिया। कंबुज राज जय वर्मा सप्तम ने रघुपति को पदच्युत करने के लिए जो सेना भेजी, वह पहले राजपुर गई और वहां के राजा श्री सूर्य वर्मदेव के सेनापतित्व में उत्तरी चंपा विजय की ओर अग्रसर हुई। रघुपति जय इंद्र वर्मदेव इसके समसुख नहीं टिक सका, वह परास्त हो गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब चंपा के दोनों भाग श्री सूर्य वर्मदेव के शासन में आ गए। रघुपति को परास्त करने के लिए जो सेना कंबुज भेजी गई थी, उसके साथ चंपा का भूतपूर्व राजा जय इंद्र वर्मा सप्तम भी था, जिसे 1190 में बंदी बनाकर कंबुज ले आया गया था। जय वर्मा की इच्छा थी कि उसे उत्तरी चंपा का राजा बना दिया जाए ताकि चंपावासियों की राष्ट्रीय भावना संतुष्ट की जा सके। वह चाहता था कि जय इंद्र वर्मा उसके अधीनस्थ राजा के रूप में उत्तरी चंपा का शासन करे, पर श्री सूर्य वर्मदेव ने उसकी योजना को क्रियान्वित नहीं होने दिया। उसने उत्तरी चंपा को भी अपने शासन में ले लिया और वह संपूर्ण चंपा पर स्वतंत्र राजा के समान शासन करने लगा। जय इंद्र वर्मा ने जब सेना एकत्र कर उसका विरोध करने का प्रयत्न किया तो श्री सूर्य वर्म देव ने उसके विरुद्ध सैन्य शक्ति का प्रयोग किया और त्रैक के रण क्षेत्र में उसे न केवल परास्त किया अपितु उसका वध भी कर दिया। इस प्रकार उस प्रतापी चंपा नरेश का करुण अंत हुआ जिसने जल मार्ग द्वारा कंबुज को आक्रांत किया था और उसे देश की राजधानी को बुरी तरह से विनष्ट किया था। पर श्री सूर्य वर्म देव शांतिपूर्वक चंपा का शासन नहीं कर सका। कंबुज राज जय वर्मा सप्तम ने उसे अपना वशवर्ती बनाने के लिए अनेक बार चंपा पर आक्रमण किए। 1203 ईस्वी में एक कंबुज सेना उसके विरुद्ध भेजी गई जिसका सेनापति युवराज उंधनपति था। यह श्री सूर्य वर्म देव का चाचा था और मूलतः चंपा का निवासी था। संभवतः वह भी अपने भतीजे के साथ चंपा से कंबुज गया था और जय वर्मा सप्तम का आश्रय प्राप्त कर उसने भी कंबुज के शासन तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। उंधनपति के नेतृत्व में जो सेना श्री सूर्य वर्म देव के विरुद्ध भेजी गई थी उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। श्री सूर्य वर्म देव परास्त हो गया और कंबुज राज जय वर्मा सप्तम द्वारा चंपा का शासन युवराज उंधनपति के सुपुर्द कर दिया गया। उसके शासन के विरुद्ध जो भी विद्रोह चंपा में हुए उनका दमन करने में भी उसने अच्छी सफलता प्राप्त की। इस प्रकार अब चंपा पर कंबुज का प्रभुत्व स्थापित हो गया था क्योंकि उंधनपति कंबुज राज जय वर्मा की ओर से ही वहां का शासक नियुक्त था। कंबुज के साम्राज्य की सीमा अब अनाम के साथ आ लगी थी और यह स्वाभाविक था कि इन देशों में युद्ध प्रारंभ हो जाए। अनाम और कंबुज के संघर्ष में कंबुज की सैन्य शक्ति का बहुत ह्रास हुआ और उसके लिए चंपा पर भी अपना आधिपत्य रख सकना कठिन हो गया। यह स्थिति थी जबकि जय परमेश्वर वर्मा ने चंपा में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। 1226 ईस्वी में जय परमेश्वर वर्मा चतुर्थ। जय परमेश्वर वर्मा चंपा के पुराने राजकुल में उत्पन्न हुआ था। वह राजा जय हरिवर्म देव सप्तम का पुत्र था और उसके पश्चात चंपा के राज्य आसन पर उसी का अधिकार था। पर 1163 ईस्वी में जब श्री जय इंद्र वर्मा ने चंपा पर अधिकार कर लिया तो जय परमेश्वर वर्मा अपने देश को छोड़कर न्यत्र प्रवास करने के लिए विवश हो गया और अनेक स्थानों पर प्रवास करने के पश्चात उसने भी कंबुज जाकर आश्रय ग्रहण किया। कंबुज के राजा जयवर्मा सप्तम ने उसे भी युवराज की पदवी से विभूषित कर अपने राज में उच्च स्थान प्रदान किया था। अनाम के युद्ध के कारण जब कंबुज की सैन्य शक्ति क्षीण हो गई और उसके लिए अन्य देशों को अपने अधीन रख सकना कठिन हो गया तो जय परमेश्वर वर्मा ने इस दशा से लाभ उठाया और चंपा के राज सिंहासन को अधिगत कर लिया। चंपा का राजा बनकर जय परमेश्वर वर्मा ने शांतिपूर्वक शासन का संचालन किया और उसे किन्हीं अन्य युद्ध में फंसने की आवश्यकता नहीं हुई। उसका शासनकाल उस क्षति को दूर करने में व्यतीत हुआ जो कंबुज के साथ 32 वर्ष के लगभग के सुदीर्घ संघर्ष के कारण चंपा को उठानी पड़ी थी। इस राजा के भी अनेक अभिलेख उपलब्ध हुए हैं जिनमें उस द्वारा विविध देवी देवताओं की मूर्तियों को प्रतिष्ठापित करने तथा मंदिरों को प्रदान किए गए दान का उल्लेख है। 1233 ईस्वी में उत्कीर्ण कराए गए पो नगर के अभिलेख के अनुसार उसने पो नगर की देवी भगवती के लिए खमेर चम चीनी तथा सियामी दास दासियां अर्पित की थी। एक अन्य अभिलेख में उस द्वारा श्री लिंगेश लोकेश्वर श्री जिन परमेश्वर श्री जिन बुद्धेश्वरी श्री जिन लाकेश्वरी और श्री सौगात देवेश्वरी के प्रतिष्ठापित किए जाने का उल्लेख है। जय इंद्र वर्मा दशम। जय परमेश्वर वर्मा चतुर्थ के पश्चात उसका छोटा भाई जय इंद्र वर्मा चंपा के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसने 1243 ईस्वी के लगभग राजा का पद प्राप्त किया था। इस काल में चंपा के बहुत से साहसी व्यक्ति नौकाओं द्वारा अनाम के समुद्र तट पर बहुधा लूटमार करते थे। अनाम के राजा ने इस बात की और जय इंद्र वर्मा का ध्यान आकृष्ट किया और उसने इस लूटमार को बंद करवाने का आग्रह किया। चंपा के राजा ने इसका यह उत्तर दिया कि चंपा के जो तीन उत्तरी प्रदेश अनाम द्वारा अवैध रूप से अधिकृत हैं पहले उन्हें वापस लौटा दिया जाए। इस उत्तर से अनाम के राजा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और उसने एक शक्तिशाली सेना को साथ लेकर चंपा पर आक्रमण कर दिया। वह चंपा के किसी अन्य प्रदेश तो अपने अधीन नहीं कर सका, पर अपने देश को वापस लौटते हुए बहुत से चंपावासियों को कैदी बनाकर साथ ले गया, जिनमें एक रानी और चंपा के कतिपय राजपुरुष भी थे। जयसिंह या इंद्रवर्मा एकादश। 1257 ईस्वी में जय इंद्रवर्मा के भांजे जयसिंह वर्मा ने अपने माता की हत्या कर दी और राज सिंहासन को अधिकृत कर इंद्रवर्मा के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया। जयसिंह वर्मा शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहता था, इसीलिए उसने अनाम और चीन के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए और उनके राज दरबारों में अपने दूत मंडल प्रेषित किए। 8वां, मंगोलों से संघर्ष। 12वीं सदी के अंत में चीन के उत्तर में निवास करने वाली मंगोल जाति में एक वीर एवं प्रतिभाशाली नेता का प्रादुर्भाव था, जिसका नाम चंगेज खान था। 1162 से 1227 ईस्वी तक विविध मंगोल कबीलों को एक सूत्र में संगठित कर चंगेज ने एशिया और यूरोप के बहुत से प्रदेशों की विजय कर ली और एक विशाल मंगोल साम्राज्य का निर्माण किया। चंगेज खान के पोते कुबले खान ने चीन पर भी अपना शासन स्थापित किया और पेकिंग को राजधानी बनाकर दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया। 1279 ईस्वी तक वह संपूर्ण चीन का एक छत्र सम्राट बन गया था। अनाम और चंपा के राजा पहले भी चीन के सम्राटों के प्रति सम्मान का भाव रखते थे और भेंट उपहार भेजकर उन्हें संतुष्ट रखने का प्रयत्न किया करते थे। कुबले खान ने यत्न किया कि इन पड़ोसी देशों के राजा उसे अपना अधिपति स्वीकार कर लें और उनकी स्थिति अधीनस्थ या सामंत राजाओं के सदृश हो जाए। इसी प्रयोजन से उसने इन दोनों देशों के राजाओं के पास यह संदेश भेजा कि वे मंगोल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर लें। चंपा का राजा जय सिंह वर्मा या इंद्र वर्मा एकादश इसके लिए उद्यत हो गया और उसने 1281 ईस्वी में अपने राजदूत पेकिंग भेज दिए ताकि वे वहां जाकर मंगोल सम्राट के प्रति चंपा राज का सम्मान प्रकट कर सके। इस समय से कुबले खां चंपा को अपनी साम्राज्य के अंतर्गत मानने लगा और वहां के शासन पर अपना हाथ रखने के लिए उसने सगतू खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। राजा इंद्र वर्मा ने तो इस अपमान को सहन कर लिया, पर उसका पुत्र हरिजीत यह नहीं सह सका कि कोई विदेशी व्यक्ति चंपा के शासन में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करे। उसके नेतृत्व में चंपा की जनता सगतू खां के विरुद्ध उठ खड़ी हुई और इस मंगोल सरदार के चंपा में रह सकना असंभव हो गया। वह अपने देश को वापस चला गया। कुबले खां को जब यह बात मालूम हुई तो उसने एक शक्तिशाली सेना चंपा पर आक्रमण करने के लिए भेजी और सगतू खां को ही इस सेना का सेनापति बनाया था। समुद्र के मार्ग से जब मंगोल सेना ने चंपा में प्रवेश किया तो कुमार हरिजीत ने उसका वीरतापूर्वक मुकाबला किया, पर वह देर तक मंगोल सैनिकों के सम्मुख नहीं टिक सका। सम्मुख युद्ध में परास्त होकर उसने पर्वतों में जाकर आश्रय ग्रहण किया और वहां से सगतू के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा। चंपा में अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करने के प्रयोजन से कुबले खान ने 15,000 सैनिकों की नई सेना स्थल मार्ग से चंपा भेजी। चंपा पहुंचने के लिए इस सेना को अनाम होकर जाना था। अनाम के राजा ने इस सेना का प्रतिरोध किया। अनाम की सेनाओं के मुकाबले में पहले तो मंगोलों की विजय हुई, पर अंत में वे हार गए और स्थल मार्ग से चंपा पहुंच सकने में असमर्थ रहे। उधर सगतू खां को भी चंपा में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी और कुबले खां इस देश को अपने साम्राज्य का अंग बना सकने में असफल रहा। पर चंपा का राजा इंद्रवर्मा यह भली भांति समझता था कि मंगोल सम्राट के सामने देर तक टिक सकना संभव नहीं होगा, अतः उसने एक दूत मंडल 1285 ईस्वी में पेकिंग भेजा, जो बहुत सी धन संपत्ति भी कुबले खां की सेवा में अर्पित करने के लिए साथ ले गया। कुबले खां ने भी यही उचित समझा कि चंपा के शासन में अधिक हस्तक्षेप न किया जाए। इस प्रकार राजा इंद्रवर्मा मंगोलों से अपने देश की रक्षा करने में समर्थ हुआ। 1287 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। जय सिंह वर्मा तृतीय, इंद्र वर्मा के पश्चात उसका पुत्र हरिजीत जय सिंह वर्मा तृतीय के नाम से चंपा के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। मंगोल आक्रांता सगतू खां के विरुद्ध उसने अनुपम पराक्रम प्रदर्शित किया और चंपा की स्वतंत्रता की रक्षा के संबंध में उसका कर्तव्य महत्वपूर्ण था, पर राजा बनकर उसने एक ऐसा कार्य किया जिसे देशद्रोह कहा जा सकता है। उसका पहला विवाह यवदीप जावा की राजकुमारी के साथ हुआ था, जिसका नाम तापसी था। बाद में उसने अनाम के राजा की पुत्री से विवाह करना चाहा और इसके लिए उसके पिता नहोन तोन की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। यह राजा अपने पुत्र अन्न तोन को राजगद्दी सुपुर्द कर तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था और इसी सिलसिले में वह चंपा भी आया था। वहाँ जयसिंह वर्मा ने उसकी बहुत आवाभगत की और अनाम की राजकुमारी से विवाह के संबंध में उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली, पर राजकुमारी का भाई तथा अनाम के अन्य प्रमुख राजपुरुष इसके लिए तैयार नहीं हुए। इस पर जयसिंह वर्मा ने उनके सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि यदि उन्होंने अनाम की राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया तो चंपा के उत्तरी प्रांत क्यांगत्री का दक्षिणी भाग और क्वांग नाम का उत्तरी भाग अनाम को प्रदान कर दिया जाएगा। चंपा के तीन उत्तरी प्रदेश पहले ही अनाम की अधीनता में आ चुके थे। अब इन दो प्रदेशों को भी अनाम को प्रदान करने का प्रस्ताव कर जय सिंह वर्मा ने अपने देश के प्रति ऐसा द्रोह किया जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। अन्नतुन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और चंपा के दो उपजाऊ एवं समृद्ध प्रदेशों को चंपा प्राप्त कर अपनी बहिन का विवाह जय सिंह वर्मा के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात यह राजकुमारी परमेश्वरी के नाम से प्रख्यात हुई, पर जय सिंह वर्मा देर तक परमेश्वरी के साथ दंपत्य जीवन नहीं बिता सका। 1307 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 9. अनाम से संघर्ष और चंपा का उत्कर्ष। महेंद्र वर्मा। जय सिंह वर्मा तृतीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हरिजीतात्मज महेंद्र वर्मा चंपा का राजा बना। उसके पिता ने जिस प्रकार क्वांगत्री के दक्षिणी भाग और क्वांग नाम के उत्तरी भाग को अनाम नरेश को प्रदान कर दिया था, वह इसकी आंखों में शूल की तरह से चुभ रहा था। साथ ही इन प्रदेशों के निवासियों को भी विदेशी शासन असहाय था। परिणाम यह हुआ कि उनमें निरंतर विद्रोह होने लगे और अनाम के उपनिवेशकों तथा राज कर्मचारियों के लिए वहां रह सकना संभव नहीं रहा। अनाम का राजा समझता था कि इन विद्रोहियों की पीठ पर चंपा के शासन तंत्र का हाथ है, अतः उसने चंपा पर आक्रमण करने का निश्चय किया और अनाम की एक शक्तिशाली सेना ने चंपा पर चढ़ाई कर दी। अनाम का तत्कालीन राजा अन्न होवंग स्वयं इस सेना का सेनापतित्व कर रहा था। महेंद्र वर्मा के लिए इस सेना का सामना कर सकना कठिन था। वह सपरिवार समुद्र मार्ग से अनाम के राजा के पास गया और वहां उसने आत्मसमर्पण कर दिया, पर चंपा की सेना राजा के समान कायर नहीं थी। उसने डटकर शत्रु सेना का मुकाबला किया। यद्यपि अंत में वह परास्त हो गया, चंपा की सेना के कर्तव्य को देखकर अन्न होवंग बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने महेंद्र वर्मा को कैद में डाल दिया। अब चंपा अनाम की अधीनता में आ गई और उसका शासन करने के लिए अनाम के राजा द्वारा चेनांग की नियुक्ति की गई। 1312 ईस्वी में यह चेनांग महेंद्र वर्मा का भाई था, पर अब चंपा में इसकी स्थिति अनाम के अधीनस्थ राजा की थी। कुछ समय पश्चात अनाम के राजा अन्न होवंग ने स्वेच्छापूर्वक राजगद्दी का परित्याग कर दिया और उसका पुत्र निन्न होवंग अनाम का राजा बना। चेनांग ने इस राज परिवर्तन से लाभ उठाना चाहा और उसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, पर उसके लिए अनाम की शक्ति के मुकाबले में अपनी स्वतंत्र सत्ता को कायम रख सकना सुगम नहीं था। अनाम की सेनाओं द्वारा उसे परास्त कर दिया गया और उनकी कैद से बचने के लिए वह चंपा से जावा चला गया। 1318 ईस्वी में इस प्रकार चंपा के उस राजवंश का अंत हुआ जिसका प्रारंभ 1145 ईस्वी में रुद्र वर्मा परम ब्रह्मलोक द्वारा किया गया था। चेनांग का भारतीय नाम क्या था यह ज्ञात नहीं है। चंपा की स्वतंत्रता। 1318 में चंपा पर अनाम का प्रभुत्व स्थापित हो गया था और वहां कोई राजा नहीं रह गया था। इस दशा में अनाम के राजा द्वारा आनान नामक सेनापति को चंपा का शासक नियुक्त किया गया था। संभवतः आनान चंपा का निवासी था और उसका संबंध वहां के किसी कुलीन सैनिक परिवार के साथ था। चंपा के शासन सूत्र को संभालकर आनान ने भी चे नांग का अनुसरण किया और अनाम की अधीनता से मुक्त होकर चंपा का स्वतंत्र राजा बन जाने के प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। इसी उद्देश्य से उसने मंगोलों से संपर्क स्थापित किया और चीन के मंगोल सम्राट से सहायता की याचना की। आनान के इस रूप को देखकर अनाम के राजा ने चंपा पर आक्रमण कर दिया 1326 ईस्वी में, पर अनाम की सेना आनान को परास्त नहीं कर सकी। अब वह पूर्णतया स्वतंत्र हो गया और निन्न हुवंग उसे वशवर्ती बना सकने में असमर्थ रहा। आनान एक शक्तिशाली एवं योग्य राजा था। उसने न केवल चंपा को अनाम की अधीनता से मुक्ति किया अपितु उसकी समृद्धि तथा उन्नति के लिए भी बहुत कार्य किया। आनान के बाद उसका जमाता बो दे चंपा के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, पर आनान का एक पुत्र भी था जिसका नाम चे मो था। वह राजगद्दी पर अपना अधिकार समझता था। उसने बो दे के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया पर सफल न हो सका। इस पर उसने अनाम के राजा की शरण ली और उसकी सहायता से चंपा पर चढ़ाई कर दी, पर वह बो दे को परास्त नहीं कर सका और युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई 1353 ईस्वी में, क्योंकि चे मो की सहायता के लिए भेजी गई अनाम की सेनाओं की को मुंह की खानी पड़ी थी। अतः बो दे की हिम्मत बहुत बढ़ गई। उसने यत्न किया कि सैन्य शक्ति का प्रयोग कर चंपा के उन उत्तरी प्रदेशों को अधिगत कर ले जो अनाम के अधीन थे, पर उसमें उसे सफलता नहीं हुई। चंपा का उत्कर्ष। 1360 ईस्वी के लगभग चे बोंग नगा चंपा का राजा बना। बो दे के साथ उसका क्या संबंध था यह ज्ञात नहीं है। चंपा का यह राजा भी अनाम से अपने देश के उत्तरी प्रदेश को प्राप्त कर लेने के लिए उत्सुक था, इसीलिए उसने जल और स्थल मार्गों से अनाम पर हमले करने शुरू कर दिए और वहां के अनेक नगरों में लूट मारकर प्रचुर संपत्ति प्राप्त कर ली। इस पर अनाम के राजा दू हुआंग ने एक शक्तिशाली सेना चंपा पर आक्रमण करने के लिए भेजी जो चे बोंग नगा द्वारा बुरी तरह से परास्त करती गई। जून 1369 में दू होंग की मृत्यु हो गई और वहां की राजगद्दी के संबंध में झगड़े शुरू हो गए। दू होंग के पुत्र को कैद में डालकर उसके भाई निंधा होंग ने राजगद्दी प्राप्त कर ली थी, जिस पर दू होंग की विधवा रानी ने चंपा आकर वहां के राजा चे बोंग नगा से सहायता की याचना की। चंपा का राजा तो इस अवसर की प्रतीक्षा ही कर रहा था। उसने समुद्र मार्ग द्वारा अनाम पर आक्रमण कर दिया और उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया। वहां के राजप्रसाद को ध्वंस कर लूट में प्राप्त की गई बहुत सी धन संपत्ति के साथ वह अपने देश को वापस आया 1371 में। 1372 ईस्वी में निधा हुवंग ने राज सिंहासन का परित्याग कर दिया और उसके स्थान पर खाम हुवंग अनाम का राजा बना। जनवरी 1377 में उसने एक बड़ी सेना को साथ लेकर चंपा पर आक्रमण किया। इस सेना में सैनिकों की संख्या 120,000 से भी अधिक थी। चंपा में अग्रसर होती हुई यह सेना विजयनगरी तक पहुंच गई, पर वहां चंपा की सेना ने अनुपम रणनीति प्रदर्शित की और अनाम की को बुरी तरह हार हुई। वहां का राजा खाम हुवंग भी इस लड़ाई में मारा गया, पर चे बोंग नगा अनाम की सेना को परास्त करके ही संतुष्ट नहीं हो गया। उसने तुरंत एक शक्तिशाली जहाजी बेड़े द्वारा अनाम पर आक्रमण कर दिया और उसकी राजधानी को बुरी तरह से लूटा। खाम हुवंग की मृत्यु के पश्चात गियन हुवंग अनाम के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। वह चंपा की सेनाओं का मुकाबला करने में असमर्थ रहा और चे बोंग नगा ने कई बार अनाम को आक्रांत कर वहां मनमाने ढंग से लूट मार मचाई। उसके आक्रमणों से अनाम में इतना आतंक छा गया था कि वहां के राजा गियन होंग ने अपना राजकोष राजधानी से हटाकर पहाड़ी गुफाओं में छिपा दिया। चे बोंग नगा ने अनाम पर बार बार आक्रमण किए और 1389 में प्रायः संपूर्ण अनाम उसकी अधीनता में आ गया, पर वह अस्थायी रूप से उस पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सका। अभी वह अनाम की विजय को पूरी करने में ही लगा हुआ था कि उसकी मृत्यु हो गई। चंपा की सेना का एक सेनापति शत्रु से मिला हुआ था। उसने अपनी सेना के भेद अनाम को दे दिए और यह बता दिया कि चे बोंग नगा जिस जहाज पर रहकर सेना का संचालन करता है उसका रंग हरा है। यह ज्ञात होते ही अनाम की सेना ने इस जहाज पर गोलों की बौछार शुरू कर दी और चंपा के प्रतापी राजा चे बोंग नगा का देहावसान हो गया। राजा के मरते ही चंपा की सेना में भगदड़ मच गई। लाखों लाखय नामक सेनापति ने चंपा की सेना को अनाम से वापस लौटने का आदेश दिया और दिन रात चलकर यह सेना अपने देश पहुंचने में समर्थ हुई। 1390 ईस्वी में दसवां चंपा का पतन और अनाम की विजय। वीरभद्र वर्मदेव, चंपा पहुंचते ही लाखय ने अपने को राजा घोषित कर दिया। चेबोंग नगा के दो पुत्र भी थे और चंपा के राज सिंहासन पर उन्हीं का अधिकार था, पर लाखय ने इसकी कोई परवाह नहीं की। इन पुत्रों ने अनाम जाकर शरण ली, पर उन्हें राजगद्दी दिलाने का कोई प्रयत्न अनाम द्वारा नहीं किया गया। लाखय द्वारा चंपा में एक नए राजवंश का प्रारंभ किया गया जो ब्रिशु वंश कहता है। इस राजा का असली नाम श्री जय सिंह वर्मदेव श्री हरि जाति वीर सिंह चंपापुर था। 1390 से 1401 तक उसने चंपा पर शासन किया और उसके बाद श्री ब्रिशु विष्णु जाति वीरभद्र वर्मदेव चंपा के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। चंपा और अनाम में जो संघर्ष चीरकाल से चला आ रहा था उसका अब पुनः उग्र रूप से प्रारंभ हो गया। वीरभद्र वर्मदेव के शासन सूत्र को संभालते ही अनाम की सेना ने चंपा पर आक्रमण कर दिया 1401 में, पर उसे परास्त होकर वापस लौट जाना पड़ा। अगले साल 1402 में अनाम का एक अन्य आक्रमण चंपा पर हुआ जिसमें चंपा का सेनापति मारा गया। इसमें वीरभद्र वर्मदेव घबरा गया और अनाम से संधि कर लेने में ही उसने अपना हित समझा, पर अनाम का राजा केवल इस शर्त पर संधि के लिए तैयार हुआ कि क्वांग नाम और क्वांग नगी के प्रदेश उसके सुपुर्द कर दिए जाएं। चंपा का अमरावती प्रांत इन्हीं प्रदेशों में था और इंद्रपुर नगरी की स्थिति भी इसी क्षेत्र में थी। विवश होकर वीर भद्र वर्मदेव को यह शर्त स्वीकार करनी पड़ी और चंपा देश का सबसे समृद्ध भाग अनाम को प्रदान किया गया। पर कुछ समय पश्चात वीरभद्र वर्मदेव को अपने किए पर पश्चाताप हुआ और अनाम के विरुद्ध चीन से सहायता प्राप्त करने के लिए उसने चीनी सम्राट की सेवा में दूत भेजे। चीन के सम्राट ने अनाम के राजा को यह परामर्श दिया कि वह अपने पड़ोसी के प्रति मैत्री का भाव रखे और उसके प्रदेशों को अधिगत न करे। इस पर अनाम के राजा ने स्थल और जल दोनों मार्गों से चंपा पर आक्रमण कर दिया। इसमें 200,000 सैनिक थे। अनाम के राजा द्वारा अपने परामर्श की अपेक्षा की बात चीन के सम्राट को सहन न हुई। उसने वीरभद्र वर्मदेव की सहायता के लिए जंगी जहाजों का बड़ा बेड़ा भेज दिया जिसके सम्मुख अनाम की जलसेना नहीं टिक सकी। अनाम की जिन सेनाओं ने चंपा पर आक्रमण किया वे तुरंत अपने देश को वापस लौट गईं, पर चीनी सम्राट का क्रोध इससे शांत नहीं हो सका। वीरभद्र वर्मदेव भी उसे अनाम के विरुद्ध उकसा रहा था। चीन ने अनाम पर आक्रमण कर दिया जिससे वहां का राजा अपने परिवार के साथ चीन की सेना द्वारा कैद कर लिया गया 1407 में। चीन की कैद में ही अनाम के राज परिवार की मृत्यु हो गई। अब वीरभद्र वर्मदेव ने उन प्रांतों को भी प्राप्त कर लिया जिन्हें की 1402 की संधि द्वारा उसने अनाम के राजा को प्रदान कर दिया था। अनाम की तरफ से निश्चिंत होकर उसने कंबुज देश पर भी आक्रमण किया और वहां भी उसे सफलता प्राप्त हुई। महाविजय 1441 ईस्वी में राजा वीरभद्र वर्मदेव की मृत्यु हुई और उसका भांजा महाविजय चंपा के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। वह चाहता था कि चंपा के उन उत्तरी प्रदेशों को भी अधिगत कर ले जो चीरकाल से अनाम की अधीनता में विद्यमान थे। इसीलिए उसने अनाम पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए, पर उनमें उसे विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। इन आक्रमणों से परेशान होकर अनाम के शासन तंत्र ने चंपा पर चढ़ाई करने का निश्चय किया और उसकी एक सेना चंपा में अग्रसर होती हुई विजयनगरी तक पहुंच गई 1446 ईस्वी में। महाविजय अपनी सेना को विजय के दुर्ग में ले गया और उसने वहां से अनाम की सेना का सामना करने की योजना बनाई, पर महाकोइलाई नाम के एक राजपुरुष ने जो महाविजय के परिवार का ही था शत्रु सेना को दुर्ग का भेद दे दिया। अब अनाम की सेना को विजय के दुर्ग को अधिगत करने में कठिनाई नहीं हुई। महाविजय को उसके परिवार के साथ कैद कर लिया गया और अनाम ने बहुत सी धन संपत्ति विजयनगरी की लूट से प्राप्त की। चंपा का पतन और अनाम की विजय। महाकुइलाई ने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए ही विजय के दुर्ग का भेद शत्रु सेना को दिया था, पर वह देर तक राज सुख का उपभोग न कर सका। 1449 ईस्वी में उसके छोटे भाई कुईदो ने उसे कैद में डाल दिया और स्वयं राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। पर कुईदो के विरोधियों की भी कमी नहीं थी। एक षड्यंत्र द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और महाबन लाबा भा न्यू नग्युएत ने चंपा के शासन सूत्र को अपने हाथों में ले लिया 1457 ईस्वी में। इस राजा के शासनकाल में चंपा और अनाम का संघर्ष फिर प्रारंभ हो गया। 3 साल तक राजसुख का उपभोग कर नग्युएत ने राजगद्दी का परित्याग कर दिया और उसका छोटा भाई वनलात्रा तुवन चंपा का राजा बना। अनाम और चंपा के संघर्ष ने अब उग्र रूप प्राप्त कर लिया। त्रातुवन ने 1469 में एक जंगी जहाजी बेड़ा अनाम पर आक्रमण करने के लिए भेजा और अगले साल 1,00,000 सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना ने स्थल मार्ग से अनाम पर चढ़ाई कर दी। इस समय अनाम के राजसिंहासन पर थह तोन विराजमान था। उसने भी लड़ाई की तैयारी की। 1,00,000 सैनिकों ने समुद्र के मार्ग से चंपा पर आक्रमण किया और 1,50,000 सैनिकों ने स्थल के मार्ग से। राजा थन्नतोन स्वयं स्थल सेना का नेतृत्व कर रहा था। चंपा राज त्रातुवन ने 5,000 हाथियों की एक सेना अपने भाई के सेनापतित्व में अनाम की सेना के मार्ग अवरुद्ध करने के लिए भेजी, पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। अनाम की सेना चंपा में निरंतर आगे बढ़ती गई। शीघ्र ही वह विजयनगरी पहुंच गई जो उस समय चंपा की राजधानी थी। यहां चंपा के 60,000 नागरिक मौत के घाट उतार दिए गए और 30,000 कैद कर लिए गए। चंपा के राजा त्रातुवन को भी कैद कर लिया गया और जब उसे जहाज पर अनाम ले जाया जा रहा था तो मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध के कारण विजय प्रांत तक का संपूर्ण प्रदेश अनाम के शासन में आ गया था। अब केवल पांडुरंग और कोठार के प्रदेश ऐसे बचे थे जो अनाम के अधीन नहीं हुए। वो त्री नामक एक सेनापति इन प्रदेशों में अपने को चंपा का राजा घोषित कर दिया और अनाम के कोष से बचने के लिए उसने अनाम के अधीनस्थ राजा के रूप में रहना स्वीकार कर लिया। वो त्री के शासन में जो प्रदेश थे वे संपूर्ण चंपा राज्य के 5वें भाग से भी कम थे। चंपा के पुरातन गौरव का अब लोप हो गया था और बोत्री की स्थिति भी अनाम के राजा की कृपा पर निर्भर थी। बोत्री के उत्तराधिकारियों के शासन की कोई ऐसी घटना नहीं है जो उल्लेखनीय हो। वे एक प्रकार से स्थानीय राजा थे। 1505 ईस्वी में चंपा पांडुरंग और कौठार के राज सिंहासन पर चाकुपुलो आरूढ़ हुआ, जिसने अपने को अनाम की अधीनता से मुक्त करने का प्रयत्न किया पर वह सफल नहीं हो सका। उसे कैद करके एक पिंजरे में बंद कर दिया गया जहां तड़प तड़प कर उसने प्राण त्याग दिए। अनाम के राजा ने केवल चंपा के राजा को कैद ही नहीं किया अपितु उसके राज्य के कतिपय अन्य प्रदेशों को भी अधिगत कर लिया। अब अनाम के साम्राज्य की सीमा चंपा में फनरंग नदी तक हो गई। जो थोड़ा सा प्रदेश इस समय भी अनाम के सीधे शासन में नहीं आया था उस पर चंपा के राजाओं के अधिकार कायम रहा। यद्यपि 17वीं और 18वीं सदियों में भी अनाम की सेनाएं इन राजाओं को परेशान करती रहीं। चंपा का अंतिम राजा पोचुंग था। अनाम की ज्यादतियों को सह सकने में अपने को असमर्थ पाकर उसने कंबुज जाकर शरण ली 1822 में और इस प्रकार चंपा के प्राचीन भारतीय उपनिवेश की स्वतंत्र एवं पृथक सत्ता का अंत हुआ।